नमस्कार दोस्तों, छिंदवाड़ा वालेन से आपका दोस्त योगेश। आज भारतीय संविधान दिवस है। 26 जनवरी 1949 को इसे लागू किया गया, जिसमें मूल रूप से भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भागों और 8 अनुसूचियों में इसे क्रमबद्ध स्थापित किया गया है। इतना बड़ा संविधान निर्माण करने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा, जो आज भारत के करोड़ों लोगों के लिए एक संविधान में क्रमबद्ध तरीके से बांधता है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न के साथ में इस देश में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने में एक संविधान ही इनको एक सूत्र में बांधे हुए है। आज हमारे साथ गांधीवादी लोहियावादी विचारक डॉक्टर अनूप सर जुड़े हुए हैं। अनूप सर, मोबाइल लाइन पे स्वागत सर आपका।
धन्यवाद योगेश भाई, संविधान दिवस के पूर्व संध्या पर आपको भी बहुत सारी शुभकामनाएं।
सर, संविधान दिवस पर क्या संदेश देना चाहेंगे? सर,
संविधान दिवस पे जो हम संदेश देना चाहेंगे विशेष करके विद्यार्थियों को, कि वो संविधान को जरूर पढ़े, क्योंकि तो अगर वो संविधान को पढ़ लेते हैं तो आज जो अंधविश्वास की धारा बहाई जा रही है, या जो बिना कुछ सोचे समझे, बिना कुछ तर्क के समाज में जो कुप्रथाएं फैलाई जा रही है, जिसके माध्यम से कुछ लोग सत्ता प्राप्त करना चाहते हैं, कुछ लोग पैसे वाला बनना चाहते हैं, कुछ लोग नाना प्रकार के धंधे कर रहे हैं, तो अगर युवा वर्ग और विद्यार्थी वर्ग संविधान को पढ़ लेगा तो आधी बातों को समझ जाएगा, और आधी बातों को जब वो क्रियान्वयन करने लगेगा तब समझने लगेगा। तो समाज का एक बहुत बड़ा तबका जो शिकार हो रहा है नाना प्रकार के प्रपंचों का, नाना प्रकार के आडंबरों का, उस शिकार से बच जाएगा और एक मजबूत समाज बन जाएगी। तो मेरा तो संदेश यही है कि संविधान को विद्यार्थी पढ़े, समझे और उसको अपने आचरण में उतारे, अपने समाज में उतारे। और सरकार को भी यह चाहिए कि कक्षा 10वीं तक, चाहे वो निजी स्कूल हो, चाहे सरकारी स्कूल हो, चाहे साइंस का विद्यार्थी हो, चाहे आर्ट साइड का विद्यार्थी हो, उसे संविधान पढ़ना अनिवार्य कर दिया जाए और एक पेपर संविधान पे बनाया जाए, ताकि भारत का हर व्यक्ति संविधान पढ़ लेगा। जब पाठ्यक्रम में आ जाएगा तो भारत का हर नागरिक, हर व्यक्ति इसे परिचित हो जाएगा, तो कई प्रकार के शोषण और जुल्मों से बच जाएगा, अपने देश को समझने लगेगा कि देश के किन परिस्थितियों में संविधान को बनाया गया और संविधान में क्या क्या लिखा है, और संविधान पे चल करके हम देश को कहां ले जा सकते हैं, क्या प्राप्त कर सकते हैं। तो ये हमारा संदेश है कि विद्यार्थियों के साथ साथ नागरिक भी संविधान को पढ़े, और सरकार कक्षा 10वीं तक संविधान पढ़ना अनिवार्य करे, उसको पाठ्यक्रम में लाए और उस पर एक पेपर बनाए वो।
जी सर। सर, संविधान का क्या उद्देश्य है और आज के परिवेश को किस तरीके से देखते हैं इसको?
संविधान के अगर हम जो प्रस्ताविका है अगर उसको पढ़ लेंगे तो संविधान का उद्देश्य हमें साफ साफ क्लियर हो जाएगा, और बहुत बहुत भारी भी नहीं है, एकदम व्यवहारिक है, एकदम तार्किक है। संविधान कहता है कि हम न्याय की स्थापना करना चाहते हैं, हम बंधुता लाना चाहते हैं, हम एक संप्रभुत्वशाली व्यवस्था का स्थापना करना चाहते हैं, हम समाजवादी व्यवस्था लाना चाहते हैं, लोकतंत्र और गणतंत्र को बढ़ावा देना चाहते हैं, हम धर्म के माने में संकीर्ण नहीं है, हम धर्म के माने में हृदय सम्राट है, और दुनिया की सारे धर्म, दुनिया की सारी सभ्यता और संस्कृति को हम स्वीकार करते हैं। हमारा संविधान समता के तरफ ले जाता है, एक ऐसा समाज बनाना चाहता है जो बराबरी का हो, एक ऐसे समाज का सपना देखा है जिसमें कोई भूख से, कोई प्यास से, कोई शिक्षा के अभाव में, कोई चिकित्सा के अभाव में दम न तोड़ता हो, बल्कि हमारा संविधान एक ऐसा सपना देखा है और सपना देखा और उसको अपने अंदर समाहित किया है कि पूरी बराबरी के समाज का निर्माण हो, शिक्षा विशेष करके शिक्षा और स्वास्थ्य सभी के लिए उपलब्ध हो, सबको प्रचुर मात्रा में मिले, जिसको जितनी आवश्यकता है उतनी मात्रा में मिले। हमारा संविधान रोटी, कपड़ा और मकान की समस्या के साथ साथ शिक्षा और चिकित्सा के समाधान पे बना था, तो हमारे संविधान में वो होना चाहिए, वो हमारे संविधान में है, और ये हमारे संविधान का उद्देश्य है कि भारत के हर नागरिक के चेहरे पे खुशहाली हो, भारत का हर नागरिक पढ़ा लिखा हो, भारत का हर नागरिक स्वस्थ हो, और भारत का हर वर्ग खुशहाल हो, उसमें किसी प्रकार का भेदभाव, जाति, पंथ न हो।
जी सर, भारत के संविधान जनता के लिए है और जनता की अंतिम संप्रभुत्व है, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि प्रत्येक क्षेत्र में आपको पिछले बार भी आपने अभी हाल ही में बताया है, तो इसको लेकर अंतिम संप्रभुत्व है संविधान में,
जी
इसको किस
जी
तरीके से
जी
देखते हैं?
भारत का जो संविधान है वो पूरी ताकत भारत के नागरिक को देता है,
जी
और इसलिए कि किसी भी देश की जो नागरिक होते हैं किसी भी देश के, वही उस देश के मूल कर्ता और धर्ता होते हैं। परंतु आज के परिस्थिति में देखा जाए तो नागरिक जिसे चुन करके दे रही है, जिसे हम सरकार कहते हैं, आज वह सरकार कहीं ना कहीं नागरिक के ऊपर हावी होते दिखाई दे रही है। केवल भारत की नहीं बल्कि पूरी दुनिया का अगर आप देखेंगे तो दिखाई दे रही है, जबकि सरकार कुछ नहीं है, सरकार देश नहीं होती है और नागरिक देश को बनाते हैं। परंतु आज यदि नागरिक देश के पक्ष में कुछ बोल दे रहे हैं तो यह कहा जा रहा है कि यह तो देशद्रोही हो गए, जबकि सरकार के विरोध में बोलना देशद्रोह नहीं होता है। सरकार आज है, कल चली जाएगी, यह देश हमारा अस्थाई है, संविधान अस्थाई है, नागरिक अस्थाई है, हमारी चुनाव प्रणाली अस्थाई है, हमारे मतदाता अस्थाई है। तो जो लोग चुन करके दिए हैं वो तो मालिक होते हैं। तो संविधान पूरी ताकत देता है भारत के नागरिकों को कि आप अपने विचार अभिव्यक्त कर सकते हैं, आप विचार अभिव्यक्त करने के लिए आपको कोई रोक नहीं सकता है, आप अपने मतदान का प्रयोग कर करके बड़े से बड़े सत्ता बदल सकते हैं, और व्यवस्था बदलने के लिए अब काम करना चाहिए। मतदाता को भी और हमें नागरिकों को भी यह सोचना चाहिए कि जो हमारे संविधान में है, हमें संविधान ने इसलिए शक्ति दिया है कि हम केवल सरकार न बदले बल्कि हम व्यवस्था बदलाव के पक्षधर बने और व्यवस्था के लिए काम करें, क्योंकि हमारे शहीदों ने, जिन्होंने संविधान को बनाया, जिन्होंने संविधान बनाने के लिए शहादत दिए, देश की आजादी के लिए शहादत दिए, उनका यह सपना था कि जब हमारा देश आजाद हो तो उसमें सरकार हावी ना हो बल्कि जनता के मतों को माना जाए, जनता के निर्णयों को माना जाए और जनता जो कहे उसे माना जाए और संविधान के अनुसार देश चले। परंतु आज थोड़ी सी इधर उधर हो रहा है, तो जनता को चाहिए कि उसको ठोक पीट करके सही करे अपने मतदान के माध्यम से। ठोक पीट करके कहने का मतलब कि जब मतदान करने जाए तो जाति धर्म पंथ मजहब सबको भूल करके भारत के संविधान को सामने रख करके व्यवस्था बदलाव के लिए बटन दबाए, क्योंकि सर्वशक्तिशाली और संप्रभुत्वशाली भारत की नागरिक है, वो जो चाहेगी वो होगा, वो जब चाहेगी तब व्यवस्था सरकार बदल सकती है, क्योंकि तो संविधान कहता है कि भारत के नागरिक के पास सबसे बड़ा अधिकार है। और दूसरी बात मैं थोड़ा सा इसमें जोड़ना चाहूंगा कि आज जो लोग कह रहे हैं या कहा जा रहा है कि सरकार हमें बोलने नहीं दे रही है, बोलने की आजादी नहीं है, यह एक जुमला है योगेश भाई। भाई आपका संविधान कहता है कि आपको बोलने की आजादी है, तो आपको बोलने के लिए कौन रोक सकता है? बोलेंगे ठीक है, अगर किसी को नहीं बुरा, किसी को बुरा लगेगा तो हमारे खिलाफ जाएंगे, तो ये तो हमेशा होता है, आज से नहीं होता है। गांधी जी भी बोलते थे, लोहिया बोलते थे, जयप्रकाश बोलते थे, बाबा साहब अम्बेडकर बोले, तो उनके खिलाफ जो व्यवस्था थी, जो सत्ता थी उस समय की गई, तो सत्ता और व्यवस्था तो खिलाफ जाती रहेंगी, लेकिन अपने बोलने की अगर आजादी आप खत्म करेंगे या बोलने को अपने आप को कैद सूत करने लगेंगे या सोचेंगे कि हमारे बोलने पर कोई पहरा डाल रहा है, तो आप अपने आप अपनी कब्र खोद रहे हैं, दूसरे का कब्र नहीं खोद रहे, बल्कि यह तो सबसे बड़ा प्राकृतिक अधिकार है बोलने का अधिकार, इसे कोई नहीं रोक सकता। तो जनता को इस जुमले से बाहर निकलना चाहिए कि हमारे बोलने पे पाबंदी लगाई जा रही है, आपके बोलने पे कोई पाबंदी नहीं लगा सकता है।
जी सर, सर इसी को लेकर एक सवाल है मेरा वाला कि
जी
क्या आजकल के जो बच्चे हैं, युवा हैं, वो संविधान के प्रति कम जानकारी रखते हैं, इसको किस तरीके से देखते हैं और इसे और प्रभावी तरीके से युवाओं को, बच्चों को संविधान के प्रति जानकारी हो, इसके लिए क्या प्रयास और अधिक किए जाने चाहिए?
देखिए, आज के युवा और विद्यार्थियों के पास संविधान इसलिए कम पहुंच पा रहा है, इसलिए कम पढ़ पा रहा है कि आज के युवा और विद्यार्थी को आप एक तरीके से देखिए तो एक ढांचे में ढाल दिया गया है उनको, यानी जो पाठ्यक्रम में रहता है वही पढ़ते रहते हैं, और वही पढ़ते पढ़ते उनके साल गुजर जाते हैं, वही पढ़ते पढ़ते उनके कक्षाएं पूरी हो जाती है, और वही पढ़ते पढ़ने के बाद वो नौकरी के चक्कर में पड़ जाते हैं, पैकेज नुमा जो नौकरी है उसके व्यवस्था के गुलाम हो जाते हैं, तो उनको संविधान पढ़ने ही नहीं दिया जाता या पढ़ने की व्यवस्था नहीं की गई है। तो मैं तो पहले ही क्वेश्चन में कहा था, आप जब हमसे पूछे थे, तो हमने इसलिए कहा था कि सरकार को चाहिए कि 10वीं तक संविधान जो है बाध्यकारी बनाए, लागू करे, एक पेपर संविधान का चलाए, ताकि भारत का विद्यार्थी अगर संविधान को समझ लेगा तो वही युवा बनेगा, वही भारत का नागरिक है, वही आने वाला भारत को चलाने वाला है। तो अगर भारत के संविधान के प्रति जागरूकता बढ़ाना है तो उन युवाओं को भी चाहिए जो संविधान नहीं पढ़े हैं कि अपना जो अमूल्य समय है उनके पास, जो बहुमूल्य समय है वो इधर उधर खर्च करते हैं, उसमें थोड़ा सा समय, आधा घंटा, 15-20 मिनट संविधान के लिए निकाले और संविधान के एक एक चैप्टर को पढ़े, एक एक अध्याय को पढ़े, तो कुछ दिन में वो पढ़ सकते हैं उसको, थोड़ा बहुत समझ लेंगे, बहुत सारी बातें उसमें समझ में आ जाएगी, उस हिसाब से जीने लगेंगे। तो हमारा यह मानना है कि अगर नागरिक ठान ले कि हम नहीं, हमको संविधान पढ़ना है, तो उसे कोई रोक नहीं सकता है। तो यह सरकार की जो लापरवाही है संविधान के प्रति, या संविधान नहीं पढ़ाना चाहती है, तो सरकार को चाहिए कि संविधान को पढ़ाए, और आम जनता को भी चाहिए कि अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए संविधान के प्रति जागरूक बने और संविधान को पढ़े, तब जाकर के संविधान को समझा जा सकता है और अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाया जा सकता है।
जी सर, सर ये भारतीय संविधान को लचीला कहा जाता है, ऐसा क्यों?
जी, भारतीय संविधान को लचीला और कठोर दोनों कहा जाता है। लचीला इसलिए कहा जाता है कि जब उसमें संशोधन की बात आती है या कुछ नया जोड़ना होता है, तो उसमें प्रावधान है कि हमारे भारत के जो संसद है उसमें एक प्रस्ताव ला करके अपने सदनों में बहुमत से पास करा करके उसे पारित कर सकती है, इसलिए वो लचीला है। इस प्रकार से वो कठोर नहीं है कि कोई नियम की जरूरत है, किसी व्यवस्था की जरूरत है, उसमें लागू करना है लेकिन लागू नहीं हो पा रहा है, इस रूप में वो कठोर नहीं है। इसलिए लचीला कहा जा रहा है कि उसमें जब जरूरत पड़ती है तो हम संशोधन करके के भारत के नागरिक के पक्ष में जो व्यवस्था होती है उसको हम बना लेते हैं, उसमें हम लागू कर देते हैं, इसलिए वो लचीला कहा जाता है।
जी सर, इसी को लेकर एक है जहां हमारा संविधान मौलिक अधिकार लोगों की ढाल बनकर तैयार होता है, तो वही मौलिक कर्तव्य लोगों को अपनी जिम्मेदारी का एहसास कराता है। सर क्या संदेह, क्या देखते हैं इसको?
संविधान में सारी बातें लिखी हुई है, मौलिक अधिकार है, मौलिक कर्तव्य है, नीति निर्देशक तत्व है। अगर लोग अपने कर्तव्यों का पालन कर ले तो जो भारत पहले सोने का चिड़िया था हमारा देश, वास्तव में वो बन जाएगा। आज यह हम कह दे कि सरकार ही सब बात के लिए दोषी है, प्रशासन ही सारी बात के लिए दोषी है, तो यह अतिरेक हो जाएगा, यह एक प्रकार से अन्याय हो जाएगा। कुछ मायनों में हम लोग भी दोषी है कि जहां कर्तव्यों का पालन करना चाहिए हम वहां कर्तव्य का पालन नहीं करते हैं, और जहां नहीं करना चाहिए वहां हम करने लगते हैं। जहां किसी चीज के प्रति नहीं झुकना चाहिए वहां हम झुक जाते हैं, और जहां झुकने की जरूरत होती है वहां हम नहीं झुक पाते हैं। तो इसे हम अपनी अज्ञानता कह ले या अपने अंधविश्वास कह ले, तो इसे अगर समाप्त करना है तो हमें चाहिए कि हम अपने नागरिक कर्तव्यों का पालन करें, मूल अधिकारों के प्रति सजग रहे, और जो नीति निर्देशक तत्वों में दिशा निर्धारित किया गया राज्यों के लिए उन पर चलने के लिए प्रयास करें। राज्य उस समय चलेगा जब जनता अपने कर्तव्य पे चलेगी, जब जनता सत्यनिष्ठ होगी तब जाकर के राज्य और राज्य की व्यवस्था या सरकार जो है वो सत्यनिष्ठ बन सकती है। तो अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, मूल अधिकार के प्रति सचेत रहना चाहिए, जागरूक रहना चाहिए, और सिर्फ इसलिए नहीं सचेत रहना चाहिए कि मेरा मौलिक अधिकार नष्ट हो रहा है, बल्कि इसलिए भी सचेत रहना चाहिए कि हमारे कारण से किसी दूसरे व्यक्ति का मौलिक अधिकार या दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता भी बाधित न हो, दूसरे व्यक्ति की समता भी बाधित न हो, और दूसरे व्यक्ति के साथ अन्याय न हो। यह भी एक मौलिक कर्तव्य बन जाता है, यह भी एक नागरिक का कर्तव्य है कि उसके कर्मों से दूसरे को दुख न पहुंचे, दूसरे को क्षति न पहुंचे, यह ध्यान रखना चाहिए, हमें डीपीएसपी और हमारे मौलिक कर्तव्य में बताया गया है।
जी सर, तो ये थे डॉक्टर अनुप।
एक सवाल और है योगेश भाई, एक बात मैं जोड़ना चाहूंगा आपसे कि आज हमारे समाज के अंदर बहुत बड़ी एक प्रथा चली है, आप फेसबुक चलाते होंगे, देखिएगा ये सोशल मीडिया चाहे सोशल साइटों पे प्रतिदिन किसी ना किसी का जन्मदिन आता है। अगर हम समाज में है तो हमारे मोहल्ले में किसी ना किसी का प्रतिदिन जन्मदिन जरूर रहता है, ये सबके साथ होता है। तो जो बड़े बड़े हम उपहार देते हैं, प्लास्टिक के सामान देते हैं, चाहे स्टील के सामान देते हैं, चाहे कुछ खिलवाड़े देते हैं, जो भी हम सामान देते हैं, एक यह भी करना चाहिए कि उसके जगह पे भारत के संविधान के एक मूल प्रति दी जाए, तो उससे और जागरूकता बढ़ेगी। उसे एक फायदा यह होगा कि जिसको दिया जाएगा वो तो पढ़ेगा ही पढ़ेगा, पढ़े चाहे नहीं पढ़े, अलमारी में तो रखेगा ही रखेगा, कम से कम भारत का संविधान तो दिखेगा, उनके साथ साथ उनके परिवार वालों के नजर में भी रहेगा भारत का संविधान, तो देखते रहेंगे और देखते रहेंगे, कभी इच्छा जागरूक हो जाएगी तो उसे पढ़ लेंगे। तो मेरा यह भी मानना है कि लोगों को यह भी चाहिए कि जो जन्मदिन के अवसर पे शादियों में इधर उधर जो उपहार दे रहे उसके जगह पे कुछ अच्छे साहित्य दे, और उन साहित्यों में भारत के संविधान को भी स्थान दे, तो अच्छा होगा, इससे अच्छा संदेश जाएगा और इससे संविधान के प्रति लोगों में जागरूकता भी बढ़ेगी।
जी सर, तो ये थे डॉक्टर अनुप सर, जिन्होंने मोबाइल वाणी पर भारत के 73वें भारत संविधान दिवस के ऊपर हमारे साथ जुड़े और संविधान दिवस पर हमारे साथ जुड़कर अपनी जानकारी दी। डॉक्टर अनुप सर, मोबाइल वाणी को समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर।
आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद योगेश भाई।
जी, छिंदवाड़ा वाले सबका दोस्त योगेश, धन्यवाद।